نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से आज हम एक नई किताब, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है जन्नत की कुंजियाँ, कीज ऑफ जन्ना, और जन्नत वाजिब करने वाले आमाल। बुनियादी तौर पे ये एक अरबिक किताब है और इसको ये अहादीस का मजमू है, यानी आप सब के लिए इस वक्त डबल खुशी है। एक तो आप जन्नत में जाने की चाबियाँ ढूँढ रहे हैं और दूसरा आपने हदीस पढ़नी है, और हदीस पढ़ने वालों को जो खुशखबरियाँ दी गई अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान मुबारक से, वो सारी भी आपको मिल जाएंगी कि अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे कि जिसने मेरी बात सुनी और उसको एहसास किया, यानी उसके मुताबिक अमल किया और उसको सुनने और सीखने की कोशिश में रहा, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को हरा भरा रखे। तो इंशाल्लाह आप सारे खूबसूरत हो जाएंगे मज़ीद इस कोर्स के दौरान, क्योंकि हर रोज़ जब हम इतनी दफ़ा नबी सल्लम का नाम और उसके बाद फिर आपके बारे में आपके बोले हुए अल्फाज लेंगे तो उस वक़्त इंशाल्लाह हमें उससे बहुत फ़ायदा होगा। चंद बातें इस किताब के बारे में। बुनियादी तौर पर यह किताब अहादीस का मजमू है। हर वो हदीस जिसमें जन्नत में जाने की खुशखबरी दी गई है, तो बेसिकली यह हदीस का एक मजमूआ है कि जिसको अरबी में जो सबसे पहले किया गया था, ये शेख अब्दुल हादी बिन हसन और वाहबी थे, अरबी बुक से फिर उर्दू में इसका तर्जमा जो है वो, और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गईं और तखरीज हुई, यानी अहादीस की इस अहादीस की रिसर्च की गई कि क्या ये हदीसें सही हैं, किस दर्जे की हैं, ये सारा काम अल्लाह ताला ने हाफिज़ इमरान अय्यूब साहब से लिया और इसको इस्लामिक सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से प्रिंट आउट किया गया। औरों ने भी किया होगा इस किताब को, काफ़ी लोगों ने किया। और सबसे जो इस किताब की खूबसूरती है वो क्या है कि इसमें नासिरुद्दीन अल्बानी साहब, जो इस दौर की इस सदी की शख्सियत थे जो गुज़र गई पीछे, इनकी तहकीक है, यानी आप ये कह लीजिए मोस्ट ऑथेंटिक अहादीस अबाउट जन्ना। आप याद रखिए कि जन्नत के बारे में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, लेकिन जन्नत के बारे में मुबालगा भी बहुत है, जिस तरह जहन्नम के बारे में मुबालगा है। हमारे कल्चर की ये एक अजीब सी कहानी है कि जिन चीज़ों को लेते हैं वो चीज़ें फिर इस तरीके से नहीं कर पाते इंसान अपने लिए। तो इंशाल्लाह हम इसमें से अपने अमल के लिए अहादीस को पढ़ते जाएंगे और इसके बारे में ये उम्मीद रखेंगे जो पढ़ने का तरीका और इससे फ़ायदा उठाने का तरीका है वो क्या है। हर हदीस जो आज हम यहाँ पढ़ेंगे, हर रोज़ जो पढ़ते जाएंगे, इसी पर मुहासबा और इसी पर चेकलिस्ट। देखिए ये सारी बातें भी आपको पता लग गईं तो आप और मैं जन्नत में नहीं जाएंगे। कब तक? जब तक आप और मैं इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक ही अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। जब तक मेरा आपका अमल इसके मुताबिक नहीं होगा जो इनमें लिखा गया है, तो जन्नत नहीं मिलेगी। कैसे? मिसाल ले लीजिए, चाबी मौजूद है आपके पास लॉकर की, लगा नहीं रहे आप अपने गले में, वो चाबी लगा नहीं रहे तो क्या ताला खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। घर की चाबी है बैग में, पहले तो मिल ही नहीं रही थी। कुछ लोगों को मिलती नहीं है जन्नत की चाबी और बहुत सारे लोगों को मिली हुई है, लगा नहीं रहे। और कुछ जो वो लगाते तो हैं लेकिन पूरी सही जगह पे नहीं लगाते। आप देखते हैं कि हर चाबी के दंदाने होते हैं ना। जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ने जो दरवाज़े और जो उसके अंदर लॉक की चीज़ें लगाई हुई है ना, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके मेरे इस काम को आसान, फ़ायदेमंद और इससे खैर को लेने को आसान कर देती हैं। करना क्या आपने मैंने नियत करनी है। चंद बातें लिखिए, यानी इस किताब से फ़ायदा उठाने से पहले मैंने क्या सोचना है। हर वो अमल, हम बहुत सारे अमल पढ़ेंगे, यानी आप कह लीजिए कि पूरे दीन इस्लाम का एक खुलासा आपके मेरे सामने आने वाला है, जो पढ़ूंगी नंबर एक उस पर अपना मुहासबा करूंगी, ये लिखिए। आज दीन के इल्म में से ये चीज़ मिसिंग है किसी हद तक, सब तो नहीं है, सारे हो भी नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि आज मुहासबे के बग़ैर कुरान पढ़ा पढ़ाया जा रहा है, और भी तकब्बुर पैदा हो जाता है, और भी उसमें बड़ाई की बातें आने लगती हैं। तो फर्स्ट थिंग अपने से नियत कीजिए, मैं जो पढ़ूंगी उस पे अपना मुहासबा करूंगी। फिर दूसरा लिखिए कि अपने आप को सही नंबर्स दूंगी, यानी सेकंड पॉइंट क्या है कि मैं अपने आप को लूज मार्किंग में नहीं डालूंगी। ये भी एक हमारा कल्चर है, दूसरों के लिए बड़े टाइट मार्क्स हैं, उनके तो पेपर करते वक्त हम उनकी वो भी गलतियां देख लेते हैं जो बेचारों ने की नहीं होती, सिर्फ हमारा ख्याल है कि उन्होंने करनी है, और इसी तरह से फिर हम उन सारी चीज़ों को जब अपने पे लाते हैं तो लूज़ मार्किंग, मेरे लिए मेरी तो मजबूरियां बता, और हम अपनी सारी कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, किसी हद तक निफाक, किसी हद तक कह लीजिए हमारा दो रुखापन, उसको डाल देते हैं तो किस नाम पे डाल देते हैं, दूसरों के नाम पे, फलां की मजबूरी। यानी आप एक जुमला लिख लें, जम है आज का, हम अपनी सुस्तियों को मजबूरियों के नाम कर देते हैं, उधर तराशने लगते हैं, बहाने करने लगते हैं, हमें ऐसे लगता है कि जो कुछ भी किसी के साथ हो सकता था वो सबके साथ तो हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसमें अमल करना आसान भी कर दे, हम सब को बेहतरीन तरीके से इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। तरीक़ेकार क्या होगा कि हम इस किताब में से बुक को रीड करेंगे, कुछ चीज़ें जो इसमें आज अरबी का हदीस आएंगी या उसमें कोई दुआएं, वो कल सुबह में आपका जो पहला पीरियड होगा दुआओं का या जिसमें हम तजवीद करते हैं उसमें आप लोग दोहराया करेंगे। इस वक्त जो मेरे साथ आपने पढ़ना है वो अपने मुहासबे की नियत से पढ़ना है, जितना ज़्यादा आप अपना मुहासबा कर सकेंगे और ऑफ कोर्स आपके साथ साथ मैं अपना मुहासबा करूँगी, उतना ज़्यादा हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो हम इसको चलते हैं लेकर अपनी तरतीब के साथ, टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स के अंदर एक हदीस है, कुछ में एक से ज़ायद है। आप अपने लिए हाइलाइटर्स यूज़ कर लीजिए, लिखिए, जो भी करें। एक टॉपिक की जब अहादीस पूरी हो जाएं तो उसके नीचे तीन चार लाइनें छोड़ दीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में जगह छोड़ दीजिए। ये क्या है, आपके होमवर्क के लिए, और होमवर्क के घर जाकर एक एक टॉपिक के ऊपर ज़रा सा गौर फिक्र करना है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैंने क्या कर लिया, और फिर गोल्स बनाने हैं। आप तीन लाइनें छोड़ दीजिए मुहासबे के, दो लाइनें लिख दीजिए कि अब इस हदीस को या इस मौजू की हदीस को पढ़कर या हदीस को पढ़कर मैंने करना क्या है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सूरत आल इमरान की आयत से कि जिसमें अल्लाह सुबहान तआला ने आपको मुझे रग़बत दिला दी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वसारियू इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नह, और दौड़ लगा दो बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ। और बख्शिश किसकी तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से है। अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए एक मुकाबले का मैदान खोल दिया है, सुस्तियाँ छोड़ दो, बहुत हो गया, अब तो एक और रमज़ान भी तुम्हें मिल गया, अब तो एक और दौरे कुरान भी मिल गया, तुम्हारे उज़र तुम्हारी चीज़ें क्यों ना पीछे हुई, तो दौड़ो। इससे मुराद क्या है, कोशिशों को तेज़ करो। अपने अपने आप को देखे, मैं और आप, क्या आप और मैं पिछले साल की निस्बत इस वक्त जन्नत से करीब हैं, नेकियों से करीब हैं कि नहीं। और साथ ही फरमाया वह जन्नत नरदुह समावात वल अर्थ, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों ज़मीन जितनी होगी। मतलब यह है कि सुस्ती छोड़ो, भागो, आगे चलो। किस तरीके से चलो, इसको करना है, आइए हम इसको पढ़ेंगे। और चूँकि अमल का सफ़र थोड़ा तल्ख होता है, इंसान अपने आप को इसके साथ अब पीछे महसूस करता है, तो अल्लाह से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हम जो भी पढ़ें हमें इस पे अमल की तौफीक देना, और दूसरे किसी को नहीं देखना। फिर आप देखिए कि अगर आप जन्नत की कुंजियां टॉपिक अगर देखते हैं, तो इसके बाद अगर आप इससे जो अपने लिए एक तसव्वुर बना सकते हैं ना, वो पांच चाबियां बना लीजिए। तौहीद पहली चाबी, असल में वही हदीस आपके सामने इस चाबी की सूरत में रखने लगी हूँ कि जो आपने मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी सुनी है, और वो क्या है, बुनियाल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद پانچ چیزوں پہ ہے، اور سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلی جو چابی ہے جنت میں داخلے کے لیے، شرط ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا. کیونکہ ترتیب نہیں سمجھیں گے نا تو بات باقی سمجھ بھی کوئی نہیں آئے گی. جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے آپ کو توحید کے اندر پختہ کرتے جائیں گے، اللہ کی مدد، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. سب سے پہلی چابی نہ ہو، آپ اس وقت اس تصورات کو اپنے تصور سے دیکھیے، مین ڈور کی چابی نہ ملے کبھی. گھر میں جاتے ہوئے گیٹ ہوتا ہے نا، ہمارے کلچر میں اس کو گیٹ کہتے ہیں، گیٹ کی چابی نہ ہو تو کیا آپ کے کمروں کی چابیاں کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی نا. بالکل، کمرے کی چابی نہ ہو، گیٹ سے تو اندر آ جائیں گے، تو کیا کمرے کے اندر گھس سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں، اسی طرح سوچیے، کمرے میں بھی آ گئے، یعنی پہلے گیٹ کھول لیا، پھر گھر کا مین ڈور اندر جو لکڑی کا ہوتا ہے وہ کھول لیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا اپنا کمرہ بھی لاک تھا، تیسری چابی آپ کے کمرے کی ہے، چوتھی آپ کے کمرے کے اندر ایک الماری ہے اس کی ہے، تو پانچویں اندر ایک چھوٹا سا سیف ہے جس میں آپ نے خزانہ چھپایا ہوا ہے. مجھے بتائیں گے کیا ان میں سے پانچوں میں سے ایک بھی چابی نہ ہو، کیا آپ وہاں سیف میں رکھی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے. ایون آپ کا گھر ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ کے نام کی تختی لکھی ہوئی ہے، بٹ آپ نے اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ پانچ چابیاں موجود ہوں. اتنی بات کلیئر ہے؟ چلیے لکھیے. یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی اور میں نے آپ کو سمجھا دی تو آج کے بعد اپنی فکر لگ جائے گی. توحید ہے مین ڈور، گیٹ کی چابی. جو لوگ ابھی اس مین ڈور سے باہر سے گیٹ سے اندر ہی نہیں آئے، ان کے لیے تو وہ سیف، سیف کو آپ لکھ لیجیے جنت، اردہ السماوات والارض، بڑا قیمتی ہے وہ خزانہ، اس سیف کا تو تصور ہی نکال دیں. تو پہلی چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دونوں شہادتیں جو ہیں ان کو ماننے اور ان کا حق دیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو پھر سارے باہر رہ گئے نا، جو اسلام سے بے نیاز ہے، اسلام ان سے بے نیاز ہے، نہ انہوں نے جنت مانگی نہ جنت ان کو مانگتی ہے. چلیے چابی کھول لی، لکھیے. جو مین گیٹ سے اندر آ گئے یہ مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. شہادت دیں نہ دیں، مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے توفیق دے دی تو کلمہ بھی پڑھ لیا، اذان بھی ہوئی کان میں. لیکن اب آگے چلیے، گھر کا جو لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے دوسرا، جو اس سے بھی زیادہ سٹرانگ لاک سے بند کیا جاتا ہے، یہ ہے نماز. جن مسلمانوں نے صرف گیٹ کھولا اور نماز نہ پڑھی، تو وہ اب مین گھر کا اندر جو ہے، یعنی اسلام کی جو خوبصورتی ہیں، جو اسلام کی سیکیورٹیز ہیں، جو تحفظ ہیں، اس سے بھی فائدہ نہیں لے سکیں گے. بات واضح؟ کتنا ترس آ رہا ہے اس شخص پہ، آپ اپنے تصور سے سوچئے. تپتی دھوپ ہے، مین گیٹ سے اندر آ گیا، کسی نے کھول ہی دیا چلے اس کے لیے، اب آگے جو اندر جس دروازے سے گزر کے اندر، پنکھوں کے نیچے، چھت کے نیچے، اے سی میں جانا تھا، وہ نہیں کھل رہے. تو نماز جنت کی دوسری چابی ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں حد فاصل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، الحمدللہ کچھ اچھے مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہو گئے؟ گیٹ سے بھی اندر آ گئے اور مین ڈور سے بھی اندر آ گئے. آپ اپنی زبان میں کہہ لیجیے کوریڈور میں آ گئے، مین ہال وے میں آ گئے. زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ تمہارا اپنا مال ہے، ہم کیوں کسی کو دیں؟ تو پھر آپ ان کو اپنے بیڈ روم کی چابی نہیں مل رہی، وہ صرف باہر کے ہال وے سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کی زندگی میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو پرائیویسی ہوتی ہے. جو انسان اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے خوشی محسوس کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے ہوٹلوں اور گھروں میں چلے جائیں، مہمانوں میں چلے جائیں، مہمان بن کر جائیں، آپ کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے ہوتی ہے. سینس آف ریلیف، خوشی، اطمینان، پرائیویسی، ہم کسی پہ بوجھ نہیں ہیں، ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے. अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात भी दे दी तो अब बेडरूम खुल गया, रोज़ा नहीं रखना। इस रमज़ान में मैंने बिलीव मी रोज़े के खुलने से 1-1.5 घंटा पहले ऐसे दस्तरखान लगाकर लोगों को खाना खाते देखा कि जैसे बग़ैर रमज़ान के कोई खाता है। और खुले मैदान में औरतें होती तो मान लेते कि उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन मर्द थे, कहीं से गुजर रहे थे, पूरा दस्तरखान बिछा हुआ है और 5-6-7 जो भी लोग थे उस जगह पे, वो सब बैठ के पूरे तपाक से टिफ़िन खोल के खाना खा रहे थे असर की करीब। आई डोंट नो क्या मजबूरी होगी उनकी, मुझे नहीं पता। तो अब आप कह लीजिए कि आप अलमारी नहीं खोल पा रहे जिसमें से आपने ख़जाना लेना। और आखिरी चीज़ आप अब समझ गए, सब कुछ कर लिया, हज नहीं किया हुआ। आप पाकिस्तान में रहने वालों को शायद ये बात इतनी मुश्किल ना लगे, जब मैं बाहर के मुल्कों में बैठे हुए लोगों से ये सवाल करती हूँ कि आप में से किस किस ने हज नहीं किया, और मेरी हैरत गुम हो जाती है, मेजॉरिटी ने हज नहीं किया, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप पाकिस्तान से लंदन, यूएई और अमेरिका जिधर मर्जी जाएं, आप सऊदी अरब के रास्ते से गुजर के आए हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान से इधर जाते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, वो तो साइड वेव निकलता है, तो आप तो उस जगह से गुजर कर आ चुके हैं। तो हज, यहाँ वो हदीस भी याद कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने हज ना किया ना ख्याल आया तो फिर जिस तरह मर्ज़ी वो दुनिया से जाए। ठीक है, तो अब आपको इस मौजू की अहमियत समझ आ गई है। आज मैं और आप इन्हीं चाबियों को खोलने की कोशिश करेंगे और अपनी अपनी इबादात में और अपने अपने मामलात में जो कमी बेशी है उसको इंशाल्लाह हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और याद रखें कि दुनिया फ़ानी है, आखिरत अबदी है, ये ख़त्म हो जाएगी, वहाँ नहीं ख़त्म होना। क़यामत के दिन मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा और ऐलान किया जाएगा कि आज के बाद जो जन्नत में गया वो जन्नती, जो जहन्नम में गया वो जहन्नमी, जो नेमतों में है वो हमेशा के लिए, जो अजाब में वो हमेशा के लिए है। और इसको सुनकर अगर खुशी से कोई मर जाता तो जन्नती मरते, और अगर गम से कोई मर जाता तो जहन्नमी मर जाते। लेकिन याद रखिए, इस चंद दिन की ज़िंदगी में जो मेरी आपकी गुजर रही है, कई लोगों ने इसको समझा ही नहीं है, ये जो आपकी मेरी ज़िंदगी में अपनी मर्जियां चल रही हैं ना अभी तक, और हमारे अभी दुनिया के गम भी नहीं ख़त्म हुए और अभी यहाँ के अरमान नहीं पूरे, उसकी वजह ये है कि हमने रास्ते को मंजिल समझा हुआ। तो इस सोच के साथ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हर रोज़ दिन में कम अज़ कम 17 बार कहते हैं अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, रास्ते समराज जन्नत का रास्ता, सबीलुल जन्ना, रोड टू जन्ना। अगर वो चीज़ें मुझे नहीं समझ आएंगी तो बात नहीं बनेगी ना। तो क्या पता चला कि आपको मुझे हर मुमकिन कोशिश करनी है, आज से लेकर जो गुजर के छोड़ दीजिए, हो गया सो हो गया, अपने ऊपर तरस ना खाएं, बल्कि अपने आप को मुबारक दें कि अभी आप और मैं जिंदा है, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं गुजरा। पिछली ज़िंदगी पे शर्मिंदगी और अपने आप को पेश कर देना अल्लाह के आगे, उसके ऊपर कलमे माफ़ी फिरवा देती है और उसके बाद अगली ज़िंदगी में अल्लाह ताला खैर दे देता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं, बुक पे खोल लीजिए, पेज नंबर 9 है, और जन्नत वाजिब करने वाले आमाल में से पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत। अब मैं और आप तो ये बात नहीं कह सकते, लेकिन किसने कही, जिसने आपको मुझे ये दीन दिलवाया, जिसके नाम का कलमा पढ़ते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात कही है तो उसके अंदर यकीनन बहुत बड़ी खैर होगी। तो हदीस आपके सामने है, हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे इस चीज़ की ज़मानत दे जो इसके दोनों जबड़ों के दरमियान, यानी मुराद क्या है, जबड़े ये होते हैं ना जॉज, मुराद यह है कि इसके अंदर यानी ज़ुबान, और दूसरी जो दोनों टांगों के दरमियान है यानी शर्मगा, मैं इसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है 64-74, किताबु रिकाक है, बाब है हिफ्ज़ुल लिसान। इतनी बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद से नहीं कह सकते, ज़रा से इस पे गौर कीजिएगा, इतनी बड़ी बात कि अगर तुम मुझे अपनी इन दो चीज़ों की गवाही दे दो या इसकी तुम सही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखले की खुशखबरी सुना देता हूँ, और क्या चाहिए, ज़रा सा सोचिए इसके बारे में। और आप देखिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में خیر لے کر آتی ہیں. پھر اسی میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. ابو داؤد کی روایت ہے 5154, کتاب الادب ہے. اس کو پڑھتے ہی تو میرے ذہن میں انگلش کا ایک جملہ آ گیا جو اکثر لوگ بولتے ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہے یا خلاصہ کیا ہے؟ صرف اس وقت بولو جب تمہارے پاس خاموشی سے زیادہ خوبصورت لفظ ہو. سمجھ آئی؟ جب تک آپ کے پاس خاموش رہنے سے خوبصورت عمل نہ ہو تو مت بولیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے. نجا من سمت. انسان کے حسن میں, یعنی جو چیز انسان کے بیوٹیفائی کرتی ہے نا, ایک چیز خاموشی ہے. آپ خود دیکھ لیں, کوئی شخص جب تک بولتا نہیں ہے کتنا باروب لگتا ہے, وہ کس ایکسنٹ سے تعلق رکھتا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ ان پڑھ ہے, وہ کم جانتا ہے, الحمدللہ کسی کو نہیں پتہ لگتا. ادھر وہ بولے گا, کئی دفعہ اتنی خوبصورت شکل, بولنے کے انداز میں خوبصورتی نہیں ہے, بھداپن لگے گا. اور اپوزٹ بھی ہے, عام سے چہرے, عام سی شکلیں خوبصورت ہو جاتی ہیں جب کوئی اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوتا. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ بولیں تو کس طرح بولتے ہیں, اچھا بولتے ہیں کہ خوبصورت بولتے ہیں. آپ دیکھیے کہ زبان ہی وہ چیز ہے جس سے جھوٹ بولا جاتا, غیبت کی جاتی ہے, بہتان, چغل خوری, گالی گلوچ, دھوکے, فریب, جھوٹی قسمیں, کسی کی بے ادبی کی جائے تو زبان سے کی جاتی ہے. برے اخلاق زبان ہی سے موسٹلی سرزد ہوتے ہیں. اور باقی سب کچھ, یعنی غیر محرم سے محبت بھری باتیں کرنا, کسی اور کی بیوی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا, اس کو آپ جس حد تک آگے لے جائیے یہ سب کچھ زبان سے متعلق ہے. بلکہ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا, منافقت کی جو چار مشہور علامت اللہ کے نبی نے حدیث میں دی اور آپ سب کو بتاؤں گی, ان میں سے تین زبان سے. بات کرے تو جھوٹ بولے, کہاں سے بولے گا؟ زبان سے. لڑائی ہو جائے تو گلم گلوچ کرے, کہاں سے کرے گا؟ وعدہ کرے تو خلاف کرے, زبان سے. صرف ایک امانت میں خیانت الگ رہ جاتی ہے, تو کیا پتہ چلا کہ اس زبان کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے, کم بولیں, بچ جائیں گے. کوئی آپ کو دنیا کے کسی بازار میں رسوا کر ہی نہیں سکتا, کوئی آپ کے لفظ نہیں پکڑ سکتا. گھروں میں ہر وقت یہی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں, اس نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, میری یہ مراد تھی, اس کی یہ مراد, یا صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم دوسروں کے اوپر گلے شکوے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے رکھیے کہ میں نے اپنے آپ کو زیادہ چپ رکھنے کی عادت ڈالنی ہے اور کم بولنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اسی میں آپ کو ایک اور حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل رہی ہے, ابو داؤد 5154 ہے. من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرن او لیسمت. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یہ بھی کتاب الادب کی روایت ہے. اور سورت قاف, کاف نہیں کہف نہیں, قاف, اس کی آیت نمبر 18 تو بندے کی زبان بند کر دیتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان فرشتہ اس کی بات لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. خوف نہیں آ رہا؟ دیکھیے, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں نے تو بیسیوں بار دیکھی ہے یہ چیز, کوئی بات, کوئی ایگریمنٹ, کوئی کمٹمنٹ, کہا جائے کہ اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, گگی بن جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں, ریکارڈ نہیں کرنا. ریکارڈنگ سے ہمیں خوف آتا ہے تو نہ کریں, اللہ کے پاس تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. ہمیشہ یہ اپنے لیے ٹپ لکھ لیں, جیسے وہ نیٹ کی زبان سے بولیں, اٹس بینگ ریکارڈڈ. ایئرپورٹس پہ لکھا ہوتا ہے, جگہ جگہ آپ پڑھیں نا تو سائن لگے ہوتے ہیں, انگلش اردو میں بھی, یہاں بھی ہوں گے شاید, کہ لائیو ویڈیوز بن رہی ہیں, کیمراز آن ہیں, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, कोई भी चीज़ कहीं रख के छोड़ देंगे, आपको नहीं पता चलेगा, दूसरों को पता चल जाएगा, तो क्या पता चला कि अपने लिए एक टिप लिखिए फिर। अब हमें सोल्यूशन भी तो लेना ना। ज़ुबान का इस्तेमाल गलत कैसे रुकेगा? जब आप और मैं ये सोचेंगे, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रीप्ले होगी क़यामत के दिन, और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात रिकॉर्ड हो रही है। इंसान कहेगा ना, माली हासिल किताबी, ये कैसी किताब है? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अक्साहु। सूरत कहाँ है कुरान में? आप 15वां पारा खोलें, आपको मिल जाएगी। असल बात यह है कि हम बग़ैर सोचे बोलते हैं, और इतना दुख किसी को। आज अभी मैं एक हदीस पढ़ रही थी, अबू ज़र गफ़ारी हज़रत बिलाल के पास खड़े थे किसी बात पे। देखिए, उनकी नीयतें बुरी नहीं होती थी, लेकिन मुंह से जब बात निकल ही जाती है ना, तो बंदा कुछ ना कुछ कम बोल ही देता है। मैं आपको हदीस पढ़ के सुना देती हूँ, जिससे आपको इस बात का एहसास होगा, ये मेरे आपके अपने अमल के लिए है। जब तक मैं और आप अपने ऊपर खुद गवाह नहीं बनेंगे, बात नहीं बनेगी। एक मरतबा खालिद बिन वलीद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू ज़र गफ़ारी और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन, सारे बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, हम जैसे लोग नहीं थे। ये इनमें से अक्सर तो वैसे ही साबिकून अव्वलून हैं, अशरे मुबशरा। ये सब बैठे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि किसी बात के जवाब में अबू ज़र ने कहा, ये काम ऐसे करना चाहिए, कोई राय दे दी। जवाब में हज़रत बिलाल ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अबू ज़र ने कहा, अल्लाह अकबर कबीरा या इब्ने सौदा, बस ये दो लफ्ज़ हैं, या इब्ने सौदा, ओ काले इंसान के बेटे, यानी या काली माँ के बेटे या काले बाप के बेटे। इबन जो कह दिया तो किसी का भी होगा, मेरी बात को गलत कहते हो। बस हज़रत बिलाल गुस्से की हालत में उठे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू ज़र की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर सख्त बरहम हुए। इधर हज़रत अबू ज़र भी आपके दरबार में हाजिर हो गए, आपने उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो न फरमाई, यानी गुस्से का इजहार किया। हज़रत गफ़ारी के तो दिल पर क़यामत टूट पड़ी, बोल उठे, मआरदुका अनिल अशियाई बलगा का या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन मेरी किसी वजह से आपका दिल दुखा है। यानी क्या हो गया आपको? जैसे हम किसी को अपने से रूठा हुआ या ज़रा उसकी टोन चेंज हुआ देखे तो हम कहते हैं, क्या बात है, खैर है, कोई दिल में बात है, कोई गुस्सा है। आपने इन्हें देखकर फरमाया, अंतल्लज़ी तुग़य्यिरु बिलालन बिउम्मिही इन्नका इमरौफ़ी का जाहिलिया। ए अबू ज़र, तुमने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को इनकी माँ की वजह से हार दिलाई है, तुम्हारे अंदर जाहिलियत की सी खसलत है। हज़रत अबू ज़र ये सुनकर रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से मेरी इस ख़ता पर मग़फ़रत तलब कर दीजिए। फिर मस्जिद से रोते हुए निकल गए। रास्ते में उन्होंने हज़रत बिलाल को जाते हुए देखा तो इनके रास्ते में अपना चेहरा ज़मीन पर रख दिया, जहाँ चल रहे थे जाके ज़मीन पर चेहरा रखा। कहने लगे, बिलाल रदी अल्लाह अन्हो, अल्लाह की कसम, मैं अपना चेहरा मट्टी से इस वक़्त तक नहीं उठाऊँगा जब तक आप अपना पाँव रख कर इसके ऊपर से ना गुजर जाए, यानी मेरे चेहरे पर पाँव रखें। अल्लाह अकबर। और ये कहें कि तुम मुअज़्ज़ज़ हो और मैं घटिया हूँ, यानी अपने बारे में कहते हैं कि मतलब मुझे घटिया बोलें और अपने आप को मुअज़्ज़ज़ बोलें। हज़रत बिलाल ये देख कर रोने लगे, कहने लगे, अब जुमला सुनिए, अल्लाह की कसम, मैं उस चेहरे पर कैसे पाँव रखूँ, सोच भी नहीं सकता, जो चेहरा सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा रेज होता, कि मैं तो तुम्हारे मुँह पर पाँव नहीं रख सकता। फिर वो दोनों खड़े हुए और एक दूसरे को गले मिले और राजी हो गए। आज हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के साथ बीसियों दफ़ा बुरा सलूक कर चुके हैं और घर की मेड्स को जहन में ले आए, अपने से छोटों को, बड़ों के साथ हम बड़े जी जी करते हैं, लेकिन मजाल है कभी इनसे माजरत की हो? कितने लोग हैं जो जानबूझकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, इनके दिल जख्मी करते हैं, बच्चों के मजाकिया नाम रख कर इन्हें रुलाते हैं, लेकिन फिर भी नादिम या शर्मिंदा होकर इनसे माफ़ी नहीं मांगते। याद रखिए कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती पर इंसान इतराया नहीं करते, गलती पर माफ़ी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। بلکہ اللہ کئی گنا اس کے اندر عزت بڑھاتا ہے. تو آئیے آج ہم سب اپنے آپ سے ایک عہد کرتے ہیں. نمبر ایک, کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی. اگر کبھی کسی کو میری یا ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی تو بلا جھجک اس سے معافی مانگ لوں گی. نیت کرتے ہیں, الحمدللہ. اور یہ روایت جو ہے یہ بخاری کی ہے, آپ اس کا ڈیٹیلز بھی لکھ سکتے ہیں ابن اساکر جلد 6 میں صفحہ 244 پہ, اور باہر کے عرب بک ہے جس میں چھپی بھی ہے, اور کتاب الایمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں, 31 نمبر حدیث ہے. تو اپنے سے نیت کیجئے کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا. ٹھیک ہے, کرتے ہیں نیت. اب یہاں اپنے اوپر لیجئے, یہاں زبان تک تو بات کر لی ہم نے, اب اگلی حدیث میں جو اسی ٹاپک میں ہمارے پاس موجود ہے, شرمگاہ کی بات ہے, پرائیویٹ پارٹس. جس طرح زبان چھری ہے نا, تو پرائیویٹ پارٹ جو ہے نا یہ آ رہی ہے, وہ تلوار سے بھی سخت ہے. اس کو بچانا ہے برائی سے. یاد رکھیے کہ شرمگاہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے, بدکاری سے بچائیے. قرآن میں ہے یغض من ابصارہم و یحفظ فروجہم, شرمگاہ کی حفاظت کرو. کسی نے مجھ سے سوال کیا اس سے کیا مراد ہے, تو میں نے کہا کہ زنا اور قربات زنا سے اس کو بچا لو. یہی ہے, لوور یور گیز, آنکھیں جھک گئیں تو شرمگاہ خود ہی دب جائے گی. تو اس میں یاد رکھیے سب کچھ ہے, زنا بدکاری تو ہے ہی ہے, اس میں ہوموسیکشولیٹی بھی ہے, لیزبینزم بھی ہے, خود سے فائدہ اٹھانا بھی ہے, حرام طریقوں سے بچانا ہے, اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ ایسا کوئی تصور بھی کرنا, یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بات کہی تھی وہ سن لیجئے. آپ نے فرمایا, نوجوانوں کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا, اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے, کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے. جو بخاری کی روایت ہے 5065 کتاب النکاح, اور مسلم میں 1400. تو یاد رکھیے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کی پھر انہوں نے دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی. یہ بھی یاد رکھیے کیسے کام کرنے والوں کی صرف آخرت نہیں خراب ہوتی بلکہ ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے. تو ہم نے کیا بات سیکھی ہے, دو چیزوں سے بچنا, آپ نے میں نے, اور وہ دو چیزیں کیا ہیں, شرمگاہ اور زبان کی حفاظت. ٹھیک ہے,